नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद और नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलें और 8 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। मंत्रालय ने बताया कि ईरानी आक्रमण शुरू होने से लेकर अब तक देश की वायु रक्षा प्रणाली ने 341 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1748 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। उसने कहा कि इन हमलों में कर्तव्य निभाते हुए सशस्त्र बल के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की भी जान चली गई। इस बीच इसराइली रक्षा बल ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी इसराइली संयुक्त अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन आरंभ होने के बाद पहली बार करीब 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। इसराइल ने कहा कि ईरान वैश्विक खतरा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मिसाइलें अब लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र के 12 देशों पर हमले किए हैं और ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जो व्यापक खतरा बन सकती है। इससे पहले इसराइली वायुसेना ने तेहरान में कई हमले किए और ईरानी सैन्य उद्योग से संबंधित बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशस्त्र सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है, इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोराखाल के स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही।
आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है, साइबर वारफेयर के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इन्फॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की। 2900 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेताओं ने चीन द्वारा पारित जातीय एकता और प्रगति प्रोत्साहन कानून की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में चीन का दमन और बढ़ेगा। 12 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हस्ताक्षरित कानून इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगा। तिब्बती नेताओं ने इस कदम को दीर्घकालिक दमनकारी कार्रवाई बताया जो तिब्बती, उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक संस्कृतियों को तेजी से नष्ट करेगा। सिक्किम के उत्तरी हिस्से मंगन में कल शाम 4.1 तीव्रता की मध्यम श्रेणी का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 14 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इससे अभी तक किसी जानोमाल की क्षति का सूचना नहीं है। इससे पहले दिन में गंगटोक और पाकयोंग जिलों में अगले 24 घंटे में 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी की बैठक हुई। चर्चा में ठोस, परिणामकारी तथा संचरित और कार्योन्मुखी साझेदारी द्वारा भारत अफ्रीका सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। मुंबई में इंडिया ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल अनाहत ने तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।